नमस्कार भारत, आज है 17 जनवरी, दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। हज सब्सिडी खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले से सियासी पारा गरमाया, कुछ मुस्लिम संगठनों ने किया समर्थन तो कुछ ने उठाए सवाल।
800 करोड़ रुपए योगी सरकार ने पिलग्रिमेज के दिए हैं और योगी सरकार ये भी कह रही है कि जो भी मनसरोवर यात्रा को जाएगा 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देंगे।
इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज जाएंगे गुजरात, पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। भारत प्रशासित कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी रही आबिदा युवाओं को सिखा रही हैं खेल के गुर, लेकिन राह नहीं थी आसान।
मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक, और 10 गोल्ड नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं और 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। भारत सरकार ने हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी। नकवी ने कहा कि इस साल करीब 2.25 लाख मुसलमान हज यात्रा पर जाएंगे। अब तक के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी ज़्यादा संख्या में यात्री हज यात्रा पर जाने वाले हैं। अमरीकी प्रशासन ने फलस्तीनियों को सहायता मुहैया कराने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की फंडिंग में आधे से ज़्यादा की कटौती की है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है। अमरीका संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को इस मद में बजट का लगभग 35% रकम देता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अमरीका के इस कदम पर चिंता जताई है। गुटेरेश ने कहा, मैं बहुत चिंतित हूं और उम्मीद करता हूं कि अंत में अमेरिका UNRWA को पहले की तरह मदद जारी रखेगा। UNRWA कोई फलस्तीनी संस्थान नहीं है। ये एजेंसी संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत बनी है और फलस्तीनी शरणार्थियों को न केवल कब्जे वाले इलाके में बल्कि जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी मदद पहुँचाती है। ये सेवाएं इन लोगों के लिए बेहद अहम हैं और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की भी ऐसी ही राय है, जिसमें कि कुछ इसराइली भी शामिल हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव वैनन को ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश होने को कहा गया है। उन्हें पिछले हफ्ते ये आदेश दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी के मामले में बैनन को ज्यूरी के सामने पेश होने को कहा गया है। इस मामले की जांच से जुड़े विशेष वकील ने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। यूरोपियन कमीशन ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार करने की है। इसके तहत पैकेजिंग में उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा जिसे 12 सालों तक रिसाइकिल किया जा सके। साथ ही माइक्रो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी योजना है। यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष फ्रांस टिम्बरमैंस ने ब्रसेल्स में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा,
By 2030, which is only 12 years away, all plastics packaging in the EU market must be reusable or recyclable in a profitable.
2030 तक, जो कि अब सिर्फ 12 साल दूर है, यूरोपियन यूनियन के सभी बाजारों में सभी प्लास्टिक पैकेजिंग को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। हम पैकेजिंग कानून को पूरी तरह बदलने के पक्ष में हैं और देखेंगे कि किस तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल हो जिसे कम लागत में रिसाइकिल भी किया जा सके। हमें चरणबद्ध तरीके से कुछ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की ज़रूरत है। ये थे यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष फ्रांस टिम्बरमैंस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बंधक बनाकर रखे गए 13 बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित इलाज में सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। कैलिफोर्निया में एक ऐसे माता पिता को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने अपने 13 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। उन्होंने बच्चों को बेड पर चेन और ताले से बांध कर रखा था। इनमें से कई बच्चे बहुत छोटे हैं और सबसे छोटे बच्चे की उम्र 2 साल है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के माहौल पर चर्चा करने के लिए 22 देशों के प्रतिनिधियों की कनाडा में बैठक हो रही है। बैठक में उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर राजी करने के उपायों पर चर्चा होगी। बैठक में चीन और रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। केंद्र सरकार ने इस साल से हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सब्सिडी हटाने के फैसले से सरकार के खजाने में जो रकम बचेगी उसे अल्पसंख्यक लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और उन्हें सशक्त बनाने में खर्च किया जाएगा। दरअसल हज यात्रियों को सरकार जो सब्सिडी देती है वो हवाई यात्रा के लिए रियायती टिकट के रूप में होती है। सरकार के इस फैसले के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये फैसला दरअसल सुप्रीम कोर्ट का है जिसे सरकार ने लागू किया है। वहीं समाजवादी पार्टी और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
भारत से इस साल हज के लिए रिकॉर्ड संख्या में लोग जाएंगे लेकिन यात्रा का अनुभव अलग होगा। भारत सरकार से इस बार हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस फैसले की जानकारी अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी।
हज सब्सिडी 2018 में के हज में नहीं रहेगी और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे।
केंद्र सरकार का कहना है कि सब्सिडी खत्म करने से खजाने में जो रकम बचेगी उसका इस्तेमाल तालीम पर किया जाएगा।
जो हज सब्सिडी थी उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों बच्चियों महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मौजूदा सरकार ने बस इतना किया है कि जो सब्सिडी 2022 में खत्म होनी थी उसे 4 साल पहले खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद।
असली ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जज आफताब आलम साहब की खंडपीठ में 2012 के मई में ये निर्णय लिया कि इस हज सब्सिडी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देना चाहिए और जो भी इससे पैसा बचे वो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और ये सब्सिडी 10 साल में ख़त्म करने को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जो 10 साल 2022 में ख़त्म होता है। सरकार ने 2022 से पहले ही सब्सिडी खत्म की, उसमें हमें कोई इशू नहीं।
उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस फैसले के बहाने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की।
देखिए वोट मिलना चाहिए मोदी जी को, बाढ़ में जाए सब मामला, दीन तलाक, हज हाउस पे रंग, मस्जिदों पे रंग, कौन हज को जाएगा कौन नहीं जाएगा, इन सवालों से हिंदू बच्चे ये ना पूछ सके कि नौकरी कहाँ है, GST का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, गोरखपुर में हजारों बच्चे मर गए उनकी फाइलें क्यों जला दी गई। तो इन सवालों को दबाने के लिए जाहिर है जब तक माहौल को खराब नहीं करेंगे।
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि हज सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद क्या दूसरे धर्मों को मिलने वाली सहूलियतें भी बंद की जाएंगी।
खास तौर से प्राइम मिनिस्टर से और RSS से ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मुसलमानों को हज सब्सिडी अपीजमेंट थी तो फिर हमको ये बताइए कि जो 2014 में कुंभ मेला हुआ था उसमें 1150 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिया। 2016 में मौजूदा मोदी गवर्नमेंट ने कल्चरल मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ रुपये दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार को सिमस्ता महाकुंभ के लिए। 800 करोड़ रुपये योगी सरकार ने पिलग्रिमेज के दिए हैं और योगी सरकार ये भी कह रही है कि जो भी मनसरोवर यात्रा को जाएगा 1.5 लाख रुपये सब्सिडी देंगे। हरियाणा की BJP खट्टर गवर्नमेंट देरा सच्चा सौजा को 1 करोड़ रुपये दिए, क्या वो अपीजमेंट था।
सवाल और सराहना के बीच लागू हुआ सब्सिडी खत्म करने का फैसला आने वाले कुछ वक्त के लिए एक नई बहस का मुद्दा बन गया लगता है। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
हज पर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी इस साल से खत्म होगी, जिस पर ओवैसी जैसे नेता नाराज हैं, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले को सही ठहराया है। ऑल इंडिया मजलिस मशावरत भी इसमें से एक है। संगठन के अध्यक्ष नवेद हामिद ने हमारे साथी वात्सल्य राय से बात की।
मैं इस फैसले की इसलिए इसका स्वागत करता हूं कि मुसलमानों की तकरीबन 25 सालों से ज्यादा ये डिमांड रही है कि हज सब्सिडी खत्म होनी चाहिए और उसकी वजह सिर्फ ये है हज सब्सिडी खत्म होने की डिमांड की कि ये हज वालों को सब्सिडी नहीं मिलती थी बल्कि एयर इंडिया को सब्सिडी मिलती थी। एयर इंडिया के नाम पर मिलने वाली सब्सिडी का पूरा बोझ और गुनहगारी जो है वो मुसलमानों के सर जाती थी और पूरे मुल्क के अंदर ये एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वगैरह मुसलमानों को बदनाम करती थी। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं उसके साथ ये भी डिमांड करता हूँ कि सरकार फौरी तौर के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो सऊदी अरब जाती हैं उसका टेंडर मांगे, मंगाना शुरू करे और ताकि यात्री हैं हज पे जाने वाले उनके टिकट के में किराया जो है वो कम हो सके।
अचानक ये जो फैसला लिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था सब्सिडी को खत्म करने के लिए, ये टाइमिंग को लेकर आप कुछ कहेंगे?
नहीं, ये यूपीए सरकार ने इसको खत्म करने की शुरुआत की थी, आहिस्ता आहिस्ता हर साल कम हो रहे थे, सब्सिडी खत्म हो रही थी, अब बहुत थोड़ी रह गई थी। और अभी जो हज रिफॉर्म के ताल्लुक से कमेटी बनाई गई थी अब्दुल रहमानुल्लाह की सरबराही में, उसने भी उसको कहा था और हमने उस मीटिंग में भी कहा था कि इंटरनेशनल बिडिंग होनी चाहिए, इंटरनेशनल टेंडर होना चाहिए ताकि ये मामला जो है खत्म हो और मुसलमानों की बदनामी खत्म हो।
लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत थोड़ी सब्सिडी थी, लेकिन जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूँ करीब 700 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है, तो क्या किसी तबके पर कोई असर भी होगा इसका?
हज जो है वही लोग जाते हैं, वही इस्लाम में उन्हीं के लिए हज जाना जरूरी है जिनके पास पैसा हो, जिनके पास पैसा ना हो वह उनको जाना जरूरी नहीं है। तो ये तो एक मजहबी जिम्मेदारी भी थी, हमारी मांग जो थी उस मजहबी जिम्मेदारी के तहत मुसलमान तमाम मुस्लिम तंजीमें, कोई तंजीम ऐसी नहीं थी जो इसको जो है इसके हक में हो।
सरकार ने साथ में ये भी कहा है कि सब्सिडी खत्म करने के बाद जो पैसा बचेगा वो तालीम में खर्च होगा।
ये सब पॉलिटिक्स है, सरकार को फौरी तौर के ऊपर इंटरनेशनल बिडिंग करनी चाहिए।
ये थे ऑल इंडिया मजलिस मशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद। चीन और जापान के नेताओं को गुजरात की सैर कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त और इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को आज गुजरात की झलक दिखाने जा रहे हैं। नेतन्याहू पहले अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ एक रोड शो में शामिल होंगे और फिर उसके बाद साबरमती आश्रम जाएंगे। इसके अलावा नेतन्याहू सारनंद और वडराट भी जाएंगे। भारत और इसराइल की मैत्री और सहयोग को लेकर इसराइल में रहने वाले भारतीय भी काफी उत्साहित हैं। इसराइल की 1948 में स्थापना के बाद से वहां भारतीय यहूदियों का पहुंचना शुरू हो गया था, अब ये वहीं के होकर रह गए हैं, लेकिन भारत से भी उनका नाता मजबूत है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने ऐसे भारतीयों से इसराइल में मुलाकात की और ये रिपोर्ट भेजी है।
यरूशलम दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक है, ये यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों का मुकद्दस शहर, लेकिन यहूदियों की एक बड़ी आबादी इसे और पूरे इसराइल को अपना अखंड देश मानती है। इसीलिए जब 1948 में इसराइल की स्थापना हुई तो कई मुल्कों में आबाद यहूदी यहां आकर बस गए, जिनमें भारतीय यहूदी भी शामिल थे।
इस समय मैं बेर्शेवा में हूँ जो इसराइल का बहुत ही प्राचीन शहर है, बाइबल में भी इसका जिक्र है, और यहाँ पर बेन इसराइलीज काफ़ी संख्या में आकर आबाद हैं और इनमें से कुछ को आप देख सकते हैं उसी समुदाय के लोग हैं जो भारत के महाराष्ट्र, अक्सर महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आए हैं, दूसरे प्रांतों के लिए हैं।
इधर था डिफरेंस था, अलग था, क्यों इंडिया से आए लाए लोग, मोरक्को से आए लाए वाइट एंड ब्लैक वो था, अपन ने दुनिया बदल हो रही है, बदली हुआ हम लोग को सफ़र करके प्रमोट करने का था कि हम लोग भी कर सकता।
धर्म के कारण यहाँ आए, अपना कुछ भारत छोड़ा है, कुछ यहाँ लेकर आ गए, जैसे कि क्रिकेट। बेने इसराइल कहे जाने वाले इन भारतीय यहूदियों को शुरू में भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये सही मायने में इसराइल के बच्चे हो गए, लेकिन भारत उनके दिलों में अब भी बसा है।
नहीं, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि इंडिया ये हमारी मातृभूमि है और ये इसराइल जो है वो हमारा पुत्र भूमि है, यानी हम लोगों के हिसाब से हम लोग इंडिया को ज़्यादा मान देते हैं कि हमारी उसको हमें मातृभूमि कहते हैं। अभी तक
मेरा छोटा बच्चा अभी इंडिया जाके आया, 3 महीना घूम के आया, उसको इंडिया बहुत पसंद आया और उन्हें बॉलीवुड फिल्म सब फिल्म देखते हैं, घर में मराठी बात करते हैं हम लोग और उन लोग को इंडिया लॉट ऑफ लव्स इंडिया।
कुछ ने क्रिकेट के जरिए भारत से मानसिक रूप से नाता जोड़े रखा तो कुछ दूसरे भारतीयों ने भोजन के द्वारा। इसी रेस्टोरेंट में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा का रोमांस परवान चढ़ा था। यहाँ के लोग शुरू में भारत के भोजन को पसंद नहीं करते थे, अब उन्होंने इसे अपना लिया।
शुरू शुरू में बने इसराइल जो कम्युनिटी कौम थी उनको अपनाया नहीं गया था कि वो यहूदी हैं, तो उनको पार्लियामेंट तक प्रोसेशन ले जाना पड़ा था कि प्रूव करने को कि वी आर ज्यूज एंड एक्सेप्ट अस एज द लॉस्ट ट्राइब।
भारतीय यहूदियों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी पूरी तरह से स्थानीय संस्कृति में ढल चुकी है। वो हिंदी और मराठी भाषा कम जानते हैं, लेकिन शायद क्रिकेट से प्रेम ने उन्हें भारत से जोड़े रखा है। ज़ुबैर अहमद, BBC, यरूशलेम।
इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत में मेहमान नवाजी का लुत्फ ले रहे हैं, वहीं इसराइल में विपक्ष भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उन पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथी रजनीश कुमार ने पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद से बात की और पूछा कि इस विरोध का नेतन्याहू पर कितना असर होगा।
नहीं लगता कि फिलहाल उनका जो यहाँ अब दौरा चल रहा है उसके ऊपर कोई बुरा असर होगा।
एक सवाल ये भी है कि भारत में जब भी राइट विंग सत्ता में होती है तो खास करके इसराइल के साथ ज्यादा प्रेम का इजहार किया जाता है, लगता है कि इसराइल के साथ उनके संबंध ज्यादा गहरे हैं। क्या आप भी इस चीज को महसूस करते हैं?
मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से दोनों जो हमारी मुख्य पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी और BJP, दोनों की तरफ से एक बाईपार्टिजन अप्रोच है इसराइल के लिए, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जहां तक मेरी समझ में आते हैं बात, रेटोरिक या बोलचाल तो अपनी तरफ है, लेकिन जो गहरे रिश्ते होते हैं उसमें मेन पार्टीज में कोई खास तब्दीली नहीं है, कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। जब आपको याद होगा कि 1992 में तो हमारे यहाँ कांग्रेस का राज था और जब हमने उसके साथ रिश्ता शुरू किया था, डिप्लोमेटिक टाइज शुरू किए थे, उसके बाद बीजेपी के दौरान वहाँ एरियल शरोन आए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट वहाँ गए हैं, प्रणब मुखर्जी वहाँ गए हैं, कलाम साहब गए हैं और मिनिस्टीरियल विजिट्स काफी हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है।
ये थे पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद, जिनका मानना है कि इसराइल में विपक्षी PM नेतन्याहू के खिलाफ विरोध के जो स्वर दिखा रहे हैं उसका उनकी भारत यात्रा और उनकी सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश उप्रेती। जी दिनेश।
जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के एनकाउंटर की साजिश के आरोपों को कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। तोगड़िया ने आरोप लगाया है कि उनका एनकाउंटर करने की साजिश की गई। तोगड़िया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवड़िया भी उनसे मिलने पहुंचे। हार्दिक ने कहा कि क्योंकि तोगड़िया और हम किसानों का मुद्दा उठाते हैं इसलिए हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक वसुंधरा सरकार ने तोगड़िया के खिलाफ केस 3 साल पहले ही वापस ले लिया था, पर बेखबर पुलिस तोगड़िया को अरेस्ट करने पहुंच गई। हज सब्सिडी खत्म करने की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों में है। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के 4 असंतुष्ट जजों की मुख्य न्यायाधीश के साथ मुलाकात को पहली खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि जजों की नाराजगी अभी बरकरार है और बातचीत का अगला दौर आज होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने ही CBI के स्पेशल जज BH लोया की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार को अभी सभी फाइलें सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के आदेश को भी प्रमुखता से छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दलित युवक की लाठियों से पिटाई की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। ये वीडियो रविवार का बताया जा रहा था और सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया था। खबर के मुताबिक दलित युवक को जय माता दी बोलने के लिए मजबूर किया गया। पुणे में इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स के एक जवान की गोलीबारी में 3 आम नागरिकों की मौत को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर छापा है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती अखबारों की समीक्षा के लिए। देशभर की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और बंदियों को रखे जाने की खबरें आती रहती हैं। सरकार साल दर साल जेलों की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ा रही है, लेकिन अब भी देश में प्रति 100 कैदियों की क्षमता की तुलना में 117 कैदी बंद हैं। सबसे बुरा हाल माओवाद प्रभावित छत्तीसगढ़ का है, जहां प्रति 100 लोगों की क्षमता वाली जेलों में 226 से भी अधिक कैदी रह रहे हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
2 सप्ताह पहले ही राज्यसभा में देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को लेकर यह रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया है कि देश के 18 राज्यों की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को छोड़ दें तो महाराष्ट्र की जेलों में सर्वाधिक 100 कैदियों की क्षमता वाली जगह में 148 से अधिक कैदी रह रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 144 के आसपास है, लेकिन सबसे भयावह आंकड़े छत्तीसगढ़ की जेलों के हैं, जहां 100 कैदियों की क्षमता वाली जगह में 226 से अधिक कैदी रह रहे हैं। राज्य की जेलों में कुल 5,883 लोगों को रखने की क्षमता है, लेकिन इन जेलों में 13,093 कैदी रह रहे हैं। प्रति 100 महिला कैदियों की जगह में 251 महिलाएं इन जेलों में बंद हैं। लेकिन राज्य में जेल महानिदेशक गिरधारी नायक का कहना है कि पहले की तुलना में हालात बदले हैं।
2012, 13, 14 में ये अधिक था निश्चित। हमने 12 से प्रयास चालू रखे, जो हमारी 262% ओवरक्राउडिंग था अब घट के 80% रह गया है।
जेलों में कैदियों की संख्या अधिक है तो जाहिर है कई जेलों में कैदी शिफ्ट में सोते हैं, नहाने और शौच का भी यही हाल है। गिरधारी नायक का कहना है कि जेलों की क्षमता बढ़ाने और नए जेलों के निर्माण के लिए सरकार काम कर रही है और जल्दी ही हालात और बेहतर होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर की जेलों की स्थिति पर लंबा शोध करने वाली एडवोकेट शालिनी गेरा का मानना है कि जेलों की क्षमता कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।
हम ये नहीं बोल सकते कि छत्तीसगढ़ में कम जेल है या हमारी कैपेसिटी कम है, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में खास करके नहीं बोल सकते कि हमने जेल में हमने कैपेसिटी नहीं बनाई है। तो अगर ये अति संकलन है तो इसलिए कि हम बहुत ज्यादा लोगों को जेल में रख रहे हैं।
राष्ट्रीय औसत देखें तो कोई आरोपी 1 साल से भी कम समय जेलों में गुजारता है और उसके बाद या तो उसे जमानत मिल जाती है या फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर के इलाकों में किसी आरोपी के जेल में रहने की अवधि 4 गुना ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार संगठन PUCL के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में नौजवानों को माओवादी बताकर जेलों में बंद किया जा रहा है।
खासकर दक्षिण बस्तर और दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में पुलिस और सरकार ये मान के चलती है कि वहाँ के लगभग सारे नौजवान या तो अपराधी हैं या नक्सली।
लेकिन राज्य के जेल महानिदेशक गिरधारी नायक इस आरोप से सहमत नहीं हैं।
6% ऑफ द एंटायर जेल पॉपुलेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज नक्सलाइट। ये टोटल मिथ है कि सारे जेल में नक्सली ठूस ठूस के भरे हुए हैं।
कहा जाता है कि कई बार आंकड़ों के सहारे झूठ गढ़ा जाता है और गिरफ्तारियां, ट्रायल, जमानत, सजा और रिहाई के आंकड़ों से बड़ा सच ये है कि छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से दुगने से अधिक कैदी घुट घुट कर अपना समय गुजार रहे हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आबिदा बाबा भारत प्रशासित कश्मीर में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती हैं। पिछले 17 सालों से मार्शल आर्ट की खिलाड़ी रही आबिदा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर मुश्किलों के बावजूद कामयाबी की एक मिसाल कायम की है। उनके रास्ते में कई रुकावटें आईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब उन बच्चों को गुर सिखाने में जुटी हैं जो मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन आबिदा को व्यवस्था से कई शिकायतें भी हैं। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
आबिदा बाबा उस समय 6 वर्ष की थीं जब उन्होंने मार्शल आर्ट के मैदान में अपनी दिलचस्पियों को जाहिर करना शुरू किया था। भारत प्रशासित कश्मीर के पांपोर की रहने वाली आबिदा बीते 17 वर्षों से मार्शल आर्ट खेल रही हैं। मार्शल आर्ट में आबिदा का मैदान तंगसू दू है। इस आर्ट को कोरियन कराटे के नाम से जाना जाता है जिसका खास मकसद आत्म सुरक्षा होता है। अपने 17 वर्ष के कैरियर में आबिदा ने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर 20 से ज्यादा तमगे जीते हैं। वर्ष 1999 में भारत के राज्य हरियाणा में पहला राष्ट्रीय खेला। उसके बाद भारत के दूसरे राज्यों में लगातार आबिदा ने मुकाबलों में भाग लिया और हर जगह गोल्ड मेडल जीतकर कामयाबी की दास्तान लिखती रहीं। 7 साल पहले पिता का निधन होने के बाद आबिदा को कई सारी मुश्किलों से भी जूझना पड़ा लेकिन मुश्किलों के आगे वो कभी झुकी नहीं।
और मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक, और 10 गोल्ड नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं और 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में मैंने 3 इंटरनेशनल खेले हैं, तीनों जगहों पे मैंने गोल्ड मेडलिस्ट लिए हैं।
सरकार से आज तक कोई मदद न मिलने पर उनका कहना था,
मेरा सपोर्ट अभी तक किसी ने नहीं किया है, खासकर गवर्नमेंट ने मेरा सपोर्ट नहीं किया है। जो मेरे साथ थे उन लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया।
18 वर्ष के भाई आदिल बाबा कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी बहन के लिए आगे जाने के रास्ते खुले रखे।
भी नहीं रोका है, मेरे पापा भी इनको अलाउ करते थे। हमारे पापा की डेथ 7 ईयर्स हो गई, पापा इस दुनिया से नहीं है, चले गए, तो वो भी इनको बहुत हेल्प करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, मैं भी इनको बहुत सपोर्ट करता हूँ।
आबिदा के कोच दविंदर गौर कहते हैं कि आबिदा ने उनकी निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भाग लिया, जहाँ उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते।
जो हमारी आबिदा है वो कश्मीर की एक सिर्फ खिलाड़ी ना होके एक ऐसी कोच है जो आने वाले कल में 100, 200, 500, 1000 खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कश्मीर के बनाएगी।
हमने जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी वहीद परा से जब पूछा कि ऐसे खिलाड़ियों की सरकार ने कोई मदद आज तक क्यों नहीं की है, तो उनका कहना था कि वो उनकी कामयाबियों की सर्टिफिकेट की जांच करने के बाद ऐसे खिलाड़ियों की मदद जरूर करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने आबिदा जैसी हुनरमंद खिलाड़ियों को आज तक नजरअंदाज क्यों किया है। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
सेंचुरियन के मैदान पर आज दूसरे टेस्ट के 5वें दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के जीतने की संभावना कितनी है, जानते हैं खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सुबह की पहली ठंडी ओस के साथ सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर, जहां आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच का आखिरी दिन है, यानी कि 5वां दिन है, और भारत की टीम के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 258 रन बनाकर भारत को 287 की लीड दी है, जिसके बाद भारत अपनी दूसरी पारी खेलने कल उतरी मैदान पर और 35 रन बनाकर 3 विकेट गवा दिए, जिसमें से सबसे अहम विकेट था विराट कोहली का, जिन्हें साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी ने 5 रन पर ही पवेलियन लौटा दिया। भारत की तरफ से 5वें दिन चित्तेश्वर पुजारा और पार्थिव पटेल आपको मैदान पर खेलते नजर आएंगे, और पहली बार अपने टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू करने के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी तरह से तैयार है। अफगानिस्तान की टीम अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ खेलेगी और दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में 14 से 18 जून को खेला जाएगा। इस बात की पुष्टि BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में की। और क्रिकेट के मैदान से अब आपको लेकर चलते हैं शतरंज की चालों की ओर, जहां 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अमेरिका के फेबियानो कारुआनो को तीसरे दौर में हराकर मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में नीदरलैंड के अनीश गिरी के साथ संयुक्त बढ़त बना ली है। आनंद की ये 3 दिन में दूसरी जीत है और उनकी नजरें रिकॉर्ड 6वें खिताब पर हैं। और खेल की बात चल रही हो तो मेलबर्न में चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात ना हो ये हो नहीं सकता। टेनिस में चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन और आज ऑस्ट्रेलियन ओपन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन से दूसरे राउंड का दौर शुरू हो जाएगा। आज के दिन मेन सिंगल्स की बात करें तो सबसे अहम मुकाबला होगा राफेल नडाल का अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनार्डो मेयर से, तो वहीं विमेन सिंगल्स में 2017 की फ्रेंच ओपन की विजेता येलेना ओस्टापेंको का मुकाबला होगा चीन की खिलाड़ी डुआन यिंगयिंग से।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत सरकार ने हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी। अमरीकी प्रशासन ने फलस्तीनियों को सहायता मुहैया कराने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की फंडिंग में आधे से ज़्यादा की कटौती की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीका के इस कदम पर चिंता जताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन को ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश होने को कहा गया है। उन्हें पिछले हफ्ते ये आदेश दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी के मामले में बैनन को ज्यूरी के सामने पेश होने को कहा गया है। यूरोपियन कमीशन ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत पैकेजिंग में उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा जिसे 12 सालों तक रिसाइकिल किया जा सके। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बंधक बनाकर रखे गए 13 बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित इलाज में सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के माहौल पर चर्चा करने के लिए 22 देशों के प्रतिनिधियों की कनाडा में बैठक हो रही है। बैठक में उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर राजी करने के उपायों पर चर्चा होगी। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया शाकिर आलम ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।